ओम शांति। बाबा के इस बेहद फुलवारी में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पूरे विश्व के अंदर आप छिपे हुए रत्नों को, जो विश्व का सबसे बड़ा जौहरी है, उसने पहचान लिया और आप सबको अपने पास बुला लिया और इन रत्नों को और भी ज्यादा तराशने के लिए, चमकाने के लिए आज हम सबके बीच उपस्थित हैं हमारी आदरणीय नीलम दीदी। आप सब करतल ध्वनि द्वारा उनका अभिनंदन करें, सम्मान करें, स्वागत करें। आप लौकिक नाम से नीलम दीदी हैं, लेकिन विशेषताओं से, अलौकिकताओं से बाप दादा ने आपका नाम नीलम परी। तो आप सब रत्नों को आज स्वयं नीलम परी आप रत्नों को चमकाएंगी। और हमारी आदरणीय नीलम दीदी, आप बचपन से ही ज्ञान में हैं। पटना से आपको ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और बचपन से ही जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित करने का लक्ष्य था और फिर बंगाल, बिहार, नेपाल, उड़ीसा की सेवाओं में आपका विशेष योगदान था। शुरू शुरू में बंगाल में जब हमारी आदरणीय निर्मल शांता दीदी रहती थी, तो उस सेंटर पर, ईस्टर्न जोन के मुख्य सेंटर पर आप निर्मल शांता दीदी जी के साथ थी और उस समय जितनी भी कन्याएं आती थी, उन सभी कन्याओं को टीचर्स ट्रेनिंग देकर उनकी अलौकिक पालना से उनको तैयार कर उनको और भी सेवाओं के लिए ट्रेंड करना, ये विशेष आपकी जिम्मेवारी थी। और आपने, आप समान ऐसी बहुत सारी हमारी स्टन जोन में बहनों को तैयार किया। एक बार फिर से आप करतल ध्वनि द्वारा दीदी का सम्मान करेंगे। स्टन जोन की सेवाओं में आपकी विशेष भूमिका है और 1973 से आप विशेष उड़ीसा की सेवा के लिए निमित्त बने और वर्तमान 1986 से आप नवरंगपुर सेवा में हैं और वहां की बाबा की बगिया को आप सजा रहे हैं। तो ऐसी हमारी अति मीठी आदरणीय नीलम दीदी से अभी हम ज्ञान के गुह्य रहस्यों को जानेंगे। ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। आप सभी भी कहिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये शब्द कितना न्यारा और प्यारा है। जो हमें स्वयं की भी स्मृति कराता है, और ये बतलाता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। तो ओम शांति कहने से ही सबसे पहले हम अपनी स्व स्थिति में स्थित हो जाते हैं। मेरा पिता शिव बाबा वह भी शांति का सागर है। हम आत्मा शांत स्वरूप, वो पिता शिव बाबा शांति का सागर, हमें इस स्मृति में ले आता है कि मुझे कभी अशांत नहीं होना है। शांति सागर बाप की मैं संतान हूँ, तो मुझे भी पूर्ण शांति की स्थिति में सदा ही रहना है। और शांति धाम मुझ आत्मा और पिता का धाम, मुझे जाना तो उसी शांति धाम में है, जहां चारों ओर शांति ही शांति की अनुभूति, वो प्रकंपन फैला हुआ है। आत्मा भी जब अशरीरी होकर शांति धाम में पहुंचती है तो शांति ही शांति की अनुभूति, और उसी अनुभूति को लेकर जब वो इस पृथ्वी पर, इस धरा पृष्ठ पर पहुंचती है तो उसे मन में ख्याल आता है कि बाबा ने मुझे शांति स्थापन करने के लिए यहाँ भेजा है। ये मुझ आत्मा का विशेष कर्तव्य है। तो इस तरह से यह ओम शांति शब्द हमें पूरा ही ज्ञान को हमारी बुद्धि में ले आता है। एक एक बात एकदम स्पष्ट रूप से हमारे समक्ष आ जाता है कि मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या करने के लिए आई हूँ, मेरा लक्ष्य और लक्षण क्या है, सारी बातों का दिग्दर्शन हो जाता है। तो जब हम अपनी इस स्व स्थिति में अपने आप को अनुभव करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर दैवी गुणों का भी समावेश होने लगता है। जितने जितने दिव्य गुण हमारे अंदर आते जाते हैं तो उन फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलने लगती है। जिसमें सर्वप्रथम अंतर्मुखता का विशेष गुण अंतर्मुखता माना ही स्वयं के अंदर में जाना। एक है स्वयं के अंतर्मन में आंतरिक स्थिति में जाना और दूसरा है अंतर्मुखता माना स्वयं के अंदर स्वयं को देखना, स्वयं के ऊपर ध्यान देना, अटेंशन देना। मुख का मतलब ही है ध्यान देना। अगर हम किसी से कोई बातचीत करते हैं, किसी का ध्यान इधर उधर जाता है तो क्या कहते हैं? थोड़ा इधर भी मुख करो, अर्थात इधर भी थोड़ा ध्यान दो। तो अंतर मन में हम स्वयं को देखें, मैं क्या हूं, मैं कैसी हूं, किस स्वरूप वाली हूं, किस कर्तव्य वाली हूं, किन गुणों से मैं सजी सजाई हूं, अपनी अवस्था को चेक करना, आत्मनिरीक्षण करना, अंदर ही अंदर अंतर मन की यात्रा करते करते स्वयं की स्थिति का ज्ञान। और स्वयं पर ध्यान देना, जब हम इस साकारी शरीर में हैं और इन इंद्रियों के साथ हैं, जो भी ऑर्गन्स जिनको हम यूज करते हैं उसके प्रति ध्यान देना। अगर हम देखें हमारे मुख मंडल के अंदर क्या क्या है, ललाट है जहां आत्मा स्थित है, नेत्र है, कान है, मुख है, नाक है, इनके द्वारा जो हम कार्य करते हैं इस पर ध्यान रहना, जिसके लिए बाबा प्रतिदिन हम सभी बच्चों को मुरली के माध्यम से हमेशा ही सजाग करते रहते हैं। जैसे शक्तियों के आगे जब किसी भी पशु की या पंछी की बलि चढ़ती है तो क्या करते हैं? मुख मंडल का हिस्सा ही देवी के ऊपर चढ़ाते हैं और बाकी जो शरीर है वो क्या होता है, जो बलि चढ़ाने वाले होते हैं शरीर को बाहर दे देते हैं भक्तों के हाथ में, वो बड़े प्यार से ग्रहण करते हैं और महाप्रसाद के रूप से उसे व्यवहार में लाते हैं। लेकिन बलि किसकी चढ़ी? बस इतने से हिस्से की, जिसके अंदर सब कुछ है। अंतर्मुखता की स्थिति हम कितने शांतमय स्थिति में हैं, हम कितने ज्ञान युक्त स्थिति में हैं, कितने योग युक्त स्थिति में हैं, कितने गुणमूर्त अवस्था में हैं, कितना राजयुक्त अवस्था में है। हर अवस्थाओं का दिग्दर्शन इस चेहरे के माध्यम से, इस मुख मंडल के द्वारा ही प्रदर्शित होता है। तो बलि चढ़ाने की प्रथा भी भक्ति में इसी की ही है। अगर ये हमने बलि चढ़ा दिया तो ये शरीर हमारा महाप्रसाद हो ही गया। इसलिए बाबा हम सभी बच्चों को सदा ही ये कहते हैं कि सभी को रूहानी दृष्टि से देखो, आत्मा की दृष्टि से देखो। आत्मा यहाँ अपने भ्रिकुटी की गुफा में बैठी है, अंतर्मुखी अवस्था में है, लेकिन उसके बाद जो कर्म इंद्रियां हैं, इन नेत्रों के द्वारा रूहानी दृष्टि, आत्मिक दृष्टि का ही भाव हो। और जितना हम आत्मिक दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं, तो स्वतः ही मन के अंदर प्रेम का भाव, भाईचारे का भाव, भाई भाई की दृष्टि स्वतः ही हो जाती है। अपने नेत्रों को लक्ष्मी नारायण जी के नेत्र के समान बनाओ। उनके नेत्रों में कितनी पवित्रता झलकती है, कितनी सात्विकता झलकती है। एकदम सीधे नेत्र जो पवित्रता का प्रतीक है। अगर इसके अंदर कुछ भी मिक्सचरती है, थोड़ा भी व्यर्थ संकल्पों का मिक्सचर भाव हो जाता है, तो देखने की जो स्थिति है वो क्या हो जाती है? तिरछी हो जाती है। हम किसी को देखें एकदम सीधे नेत्रों से, बाबा ने कहा है रूहानी दृष्टि से देखो, आंख खोल कर देखो, जो भी सामने आए उसको आत्मिक भाव से देखो। तो कितनी पवित्रता स्वतः ही, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्वतः ही हमारी धारणा के अंदर आती जाएगी। और वो पवित्र गुण, जैसा कि अभी हम सभी योग में गीत के माध्यम से सुन रहे थे, वो पवित्रता की विशेषता हमारे अंदर आती जाएगी। इसलिए जब बाबा को हम सभी देखते थे, बाबा एकदम डायरेक्ट सीधे नेत्रों से, पावरफुल दृष्टि से, शक्तिशाली नजरों से देखते थे। और उसका परिणाम क्या होता था कि सामने वाले का मनोभाव परिवर्तन हो जाता था। ऑटोमेटिक कोई क्या सोचकर बाबा के सामने आते थे, लेकिन सन्मुख आते ही उनके मन के भाव कितने परिवर्तित हो जाते थे और उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकलने लगता था और बाबा का प्यार का अनुभव करके जाते थे। आप सभी बहनों के द्वारा, दीदी दादियों के द्वारा, हम सभी तो दीदी दादियों के द्वारा ही सुनते आए। हाँ, एक बार की बात है कि कोई बाबा के सामने कोई सिख आए और उन्हें आदेश था जो उनके संघ वाले कि बाबा को खत्म करके आना है। जो दादियां थी उस समय आकर के बाबा को बताया, बाबा एक व्यक्ति आया है लेकिन उसकी नियत ठीक नहीं लगती है, लेकिन वो आपसे मिलना चाहता है। बाबा ने कहा बच्ची बुलाओ बुलाओ। बाबा के सामने आया, बाबा ने कहा बच्चे बहुत दूर से आए हो, थक गए हो, थके होंगे, पानी गिलास मंगाया और उसको पिलाया। और ऐसे ही बातों बातों में उस व्यक्ति को गुरु नानक जी का साक्षात्कार हुआ। माना वहां पर ब्रह्मा बाबा नहीं है और उस जगह पर गुरु नानक जी का साक्षात्कार वो कर रहा है। तो उस समय उसके मन में ये भाव आया, अरे मैं किसको मारने के लिए, खत्म करने के लिए आया था, लेकिन ये तो हमारे गुरु हैं। ये कौन सी विशेषता थी, ये कौन सी शक्ति थी? बाबा तो कोई जादू मंत्र नहीं करता था, कोई छू मंत्र नहीं करता था। जैसे सभी बाप बच्चे मिलते हैं, बाबा भी उसी तरह से सभी बच्चों से मिलता था। लेकिन इतनी पवित्रता की शक्ति, इतना आत्मिक भाव बाबा के अंदर था जो उस व्यक्ति के मन को परिवर्तन कर दिया और उसकी दृष्टि ऑटोमेटिक चेंज हो गई और उसने अपने गुरु साहब का साक्षात्कार किया। बाद में उसने बताया कि मुझे ऐसा ऐसा कह करके भेजा गया था लेकिन मैं चरण स्पर्श करता हूँ, मैं गिरता हूँ। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, आप तो बाप के घर में आए हो, बच्चे हो, और खुशी खुशी फिर वो रवाना हुए। तो बाबा हमें यही कहते हैं, जितनी हमारी रूहानी वृत्ति होगी, जितनी हमारी रूहानी दृष्टि होगी, आत्मिक भाव होगा, तो हमारे द्वारा किसी भी आत्मा का मनोपरिवर्तन हो सकता है और मन का परिवर्तन होने से जीवन का परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा। हमेशा बाबा के मुख से ज्ञान के ही शब्द निकलते थे। इस मुख में जो मुख है, जो वर्णन करता है, जो शब्द निकलते हैं, तो इन शब्दों का भी कितना महत्व है। जो हम सभी ने बाबा के जीवन में देखा, दीदी दादियों के जीवन में देखा, किस तरह से बाबा को फॉलो करते हुए चलती रही। एक छोटी सी बात सुनाती हूँ। एक बार बाबा, उस समय मेडिटेशन हॉल भी नहीं था, सिर्फ जो अभी हिस्ट्री हॉल है वही था पांडव भवन में। बच्चे बाहर घूम रहे थे, क्लास का टाइम हो गया था और बाबा भी बाहर आकर के चक्कर लगाए, तो बाबा ने देखा ऐसे दो चार बच्चे बाहर में घूम रहे हैं, क्लास में नहीं बैठे हैं, योग चल रहा है। तो बाबा ने उन बच्चों को कहा, बच्चे जल्दी जल्दी क्लास में जाओ, टीचर आ रहा है। टीचर के पहुंचने से क्लास में जरूर पहुंच जाना है। माना कितनी बड़ी शिक्षा बाबा ने बातों बातों में ही दी। बच्चे क्लास में जाकर के बैठे, फिर बाबा आकर के संदली पर बैठा और फिर मुरली, एक लाइन भी नहीं बजती थी और बाबा की मुरली आरंभ हो जाती थी। तो बाबा कहते हैं कि अपने मुख का भी, मुख से निकलने वाले शब्द का भी हमें ध्यान देना है। इस मुख पर क्या ध्यान देना है? पवित्रता, हर्षित मुखता। हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए? सूखा हुआ होना चाहिए, लटका हुआ होना चाहिए। किसी का मन एकदम थोड़ा गड़बड़ होता है तो चेहरा कैसे मुरझाया हुआ फूल जैसा हो जाता है ना, लटक जाता है। फिर पूछने वाले भी पूछ लेते हैं, क्या हुआ, सब ठीक है? तो पूछते हैं ना। लेकिन बाबा ने बहुत सुंदर युक्ति ये बताई है कि किसी का भी संकल्प न चले आपको देख करके, आप सदा हर्षित रहो, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। लक्ष्मी नारायण जी का चेहरा कितना स्मित हंसी, दांत निकले हुए भी हंसी नहीं, दांत दिखता हुआ भी हंसी नहीं, कि आवाज का हंसी नहीं, लेकिन एक दूसरे को देखो तो मुस्कुराओ। मुस्कुराने में तो कोई टिकट नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, या कोई मेहनत तो नहीं है ना? जो एक इंच दो इंच का है उसको अढ़ाई इंच की तीन इंच कर दो तो वही बहुत है। कोई किसी का मुंह सूखा हुआ होता है तो जबरदस्ती उंगली से उसको ऐसा कर देते हैं। अरे थोड़ा हंसो तो सही, क्यों ऐसा मुंह सूखा करके बैठे? तो चेहरे पर, मुख में भी हर्षित पना, ये देवता ही लक्षण है ना। दैवी गुण हमारे जीवन में आते जाते हैं तो ये हर्षित मुक्ता भी हमारे अंदर आती जाएगी। कब? जब हम अंतर्मुखी अवस्था में रहते हैं। इसलिए अंतर्मुखी सदा सुखी, और जो सुखी होगा उसके चेहरे पर हर्षितपना न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो हमेशा अंदर ही अंदर नाचता रहेगा, उमंग उत्साह में उड़ता रहेगा, मन का उत्साह बना रहेगा। बाबा मुरली में कहते हैं, जिस ब्राह्मण के जीवन में खुशी नहीं है तो वो क्या है? जीते जीव मुर्दा के समान। मुर्दा जो होता है कैसा पीला पड़ जाता है, कर्म करने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है, उसकी जो चेतना है वो खत्म हो जाती है, अकड़ जाता है। और हर्षित रहने से हम फ्लेक्सिबल रहते हैं, हमारा मन भी, हमारी बुद्धि भी, हमारी इंद्रियां भी पूरा फ्लेक्सिबल, टाइट नहीं। टाइट अगर हम यूज करेंगे तो उसको क्या है, जैसे कई लोग चुस्त कपड़ा पहनते हैं तो उतारने में टाइम लगता है, ढीला ढाला पहनेंगे तो तुरंत हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने हम सभी का ड्रेस भी क्या रखा है, हाँ माताएं बहनें तो जो पहनती हैं पहनती हैं, वो भी ढीला ढाला, भाइयों के लिए कुर्ता पैजामा, ये हमारा ड्रेस है। बाकी आजकल के हिसाब से कोई क्या पहनते हैं वो अलग चीज है, लेकिन बाबा ने तो हमारा ड्रेस वही बताया, माना इतने ढीले रहो, इतने खुले रहो, जो किसी भी बात में हमें ज्यादा पुरुषार्थ करने का जो अटेंशन का स्ट्रेस ना हो। अटेंशन तो रखना है, लेकिन अटेंशन का भी अटेंशन नहीं रखना है। जैसे हमें अमृत वेले 4 बजे उठना है, हमें उठना है उठना है उठना है, अटेंशन है, लेकिन एक स्ट्रेस वाला अटेंशन हो जाए, नहीं नहीं उठना ही है उठना ही है, जबरदस्ती भी उठते हैं, नहीं। हमारी स्थिति इस तरह से हो जो वो नेचुरल बन जाए, आत्मा के रूप से देखते देखते हमारे नेत्र नेचुरल हो जाएं आत्मिक स्थिति के, मुख से बोलने के लिए ज्ञान धन देने के लिए, ज्ञान रत्न देने के लिए वो भी एक नेचुरल हो जाए, तो बाकी और सब जो बातें हैं वो अपने आप वैनिश हो जाएंगी। अच्छी अच्छी बातें हमारे मुख से जब निकलती रहेंगी तो बाकी और जो बातें हैं, कभी अपशब्द निकल जाते हैं, कभी कड़वे बोल निकल जाते हैं, कभी कुछ ऐसे शब्द भी, गालियों के शब्द निकल जाते हैं, वो सब नहीं निकलेंगे। तो इसलिए बाबा हमें रोज क्या कहता है, मीठे बच्चे, मुरली का पहला शब्द ही हमारा क्या है, हमारे कान में जब तक मीठे बच्चे नहीं पड़ता है तो मुरली सुनने का भी रस कुछ कम हो जाता है। एक भाई थे, जिस समय मुरली आरंभ होगी उसी समय वो पहुंचेंगे, कितना भी कहा जाएगा मुरली के पहले आधा घंटा 15 मिनट आकर के योग करो, नहीं होता था। ठीक जब मुरली आरंभ होने की बात होती उस समय वो दौड़ दौड़ करके आते, एक चप्पल उत्तर एक चप्पल पश्चिम जैसे तैसे उतार करके क्लास में भी हाँफते हुए आकर के बैठेंगे। भाई इतना क्यों ऐसा करते हैं? नहीं बहन जी, मीठे बच्चे खिसक जाएगा तो फिर और मुरली सुनने का मजा नहीं आएगा, तो मुझे कान में मीठे बच्चे बाबा का पढ़ना है। तो देखिए बाबा ने हम सभी को मीठे 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 कह कर के क्या कर दिया, मीठा बना दिया ना। बाबा का नियम था रोज मुरली के बाद सभी को टोली खिलाने का, जरूर बाबा अपने हाथों से टोली खिलाते थे, वो भी एक तरह से नहीं, कभी बच्चे आते थे, कभी बाबा ही सभी के पास जाते थे, कभी बाबा कहता था चारों तरफ सब खड़े हो जाओ, वो हिस्ट्री हॉल में ही खड़े हो जाओ, और बाबा फिर सबको दृष्टि दे दे करके टोली देता था। तो एक तो टोली खा खा करके हम मीठे हो गए और दूसरा मीठे बच्चे सुन सुन करके भी हम मीठे हो गए। हमारे मुख के बोल भी बदलते गए, परिवर्तन होते गए। अगर उस पर हम ध्यान देते हैं तो हमारे बोल की मिठास, जो बोल व्यवहार का प्रथम चीज है, व्यवहार में बोल तो ज्यादा काम करता है ना कि नहीं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, आपने गेट खोला देखा, अरे आप इस समय ऐसे कैसे कैसे आना हुआ, अगर आपके मुख से ऐसा शब्द निकल जाए तो आने वाला क्या सोचेगा, बेकार हम आए। अगर आप कहेंगे आइए आइए बैठिए बैठिए, थकान मिटाइए, पानी पीजिए, ये भी एक बोल है। तो इसमें आने वाले की थकावट तो पूरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो भी आराम महसूस करेंगे और मन से भी उनको आशीर्वाद निकलेगा कि जो भी है हम जिस भी टाइम आए तो हमारा सत्कार हुआ। तो ऑटोमेटिक हमारा बोल भी परिवर्तन होता जाता है, हमारे कर्ण भी पवित्र होते जाते हैं। कानों से जो अनेक बातें सुनने की इच्छाएं होती हैं या गीत सुनने की इच्छा होती है, अश्लील गीतें सुनने की इच्छा होती है या कोई भी इधर उधर की फालतू पर चिंतन ये वो सुनने की इच्छा होती है, अगर बाबा की मुरली, बाबा की बातें, बाबा के महावाक्य हमारे कानों में गूंजते हैं तो हमारा कर्ण भी पवित्र हो जाता है। और सबसे ऊपर क्या है, हमारे मन बुद्धि, मन बाबा के प्रति लगा हुआ है, बाबा की स्मृति में है, बुद्धि की लय एक बाबा के साथ लाइन जुड़ी हुई है तो ऑटोमेटिक सब ठीक रास्ते पर आ जाते हैं। तो ओम शांति शब्द जो हम कहते हैं ये सिर्फ प्रणाम या राम राम जी की तरह नहीं है, ओम शांति शब्द हमें अपनी स्थिति में टिका देता है और हमारी उन धारणाओं से आगाह करा देता है कि हमें ऐसा बनना है, हमें ऐसा तैयार होना है। इसलिए कई बार मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे अगर आपको अपनी स्थिति बनानी है ना तो आप कुछ नहीं करो, बस लक्ष्मी नारायण जी के चित्र के सामने बैठ जाओ। सबसे सहज पुरुषार्थ, इजी प्रोसेस बाबा ये बतलाता है और उनमें और अपने में मेल करो, देखो, भेंट करो कि इनके अंदर क्या है और मेरे अंदर क्या है, उनकी क्या विशेषता है, मेरी क्या विशेषता है, उनकी क्या धारणाएं हैं, मेरी क्या धारणाएं। अगर वो भेंट करेंगे तो पता पड़ेगा कि हमें और किन किन बातों पर ध्यान देना है और उसे कंप्लीट करना है। हम सिर्फ कंप्लेन ही न करें कि मेरे में बहुत क्रोध है, मेरे में ऐसा है, मेरे में ये कमी है, कंप्लेन नहीं करना है, लेकिन अपने आप को कंप्लीट बनाने की चेष्टा करनी। अगर उनमें और हमारे में भेंट समान है, मेल है, तो हम भी क्या बन जाएंगे, हमारा जो लक्ष्य है, हमें मनुष्य से देवता बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो हमारे अंदर वही लक्षण आते जाएंगे। जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण होंगे। हम औरों को भी सुनाते हैं, नयों को भी सुनाते हैं, हम जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसे हमारे लक्षण होंगे। प्रदर्शनी का पहला चित्र ही तो हम लक्ष्मी नारायण समझाते हैं ना। तो हमें अंतर मन में यही निरीक्षण करते रहना है कि हमारे अंदर और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, उनमें और हमारे में और अंतर ना हो। अभी जो हम अंतर फील करते हैं वो अंतर फील ना हो, समानता नजर आने लगे। तो बाबा ने एक बार कहा था, अगर अंतर को मिटाना है तो महामंत्र को साथ लेते हुए चलो। हमारा महामंत्र क्या है? मन मना भव। मन को बाबा में स्थित कर देना है और मध्याजी भव को सदा सामने रखना है। तो ऑटोमेटिक हमारी जो स्थिति है, हमारी जो अवस्था है, उन जैसी हो जाएगी। उसके साथ साथ हमें, हम सभी को ये अवश्य ध्यान देना है कि हमारा ये जो ब्राह्मण जीवन, हम तो बाबा के बच्चे बने, ज्ञान युक्त योग युक्त बने हैं, योगी तो आत्मा बने हैं, तो हमारे अंदर भी सुख शांति की जो अनुभूति है, पवित्रता की, गुणों की जो अनुभूति है, इतने हम अपने अंदर उसको भर लें, इतना हमारा अनुभव होता जाए, जो वो अनुभव एक प्रकंपन का काम करे। शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ता है, कुछ पड़ता अवश्य है, कुछ परसेंट अवश्य पड़ता है, लेकिन जो शब्द हमारे मुख से निकल रहे हैं, अगर वो हमारी स्थिति के अंदर आ गया है, हमारे व्यक्तित्व के अंदर आ गया है, तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। आज हम दीदी दादियों को देखते हैं, अपनी जानकी दादी जी को देखते हैं, रतन मोहिनी दादी जी को देखते हैं, तो क्या ज्ञान वही है, लेकिन जब उनके मुख से मेरा बाबा निकलता है, जब दादी जी कहती हैं मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, तो उस समय दिल कैसा होता है? कितना दिल को हार्ट टचिंग, पूरा दिल को लगता है। वही हम लोग भी कहेंगे मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, लेकिन जितना हमने बाबा को दिल में समाया हुआ है, जितना बाबा के साथ हमारा प्रगाढ़ प्यार है, स्नेह है, संबंध है, सर्व संबंध की अनुभूति है, जितना हमारे दिल के अंदर होगा, तो जैसे ही मुख से वो बातें निकलेंगी तो वो दिल की बात दिल को ही टच करेगी। बाबा कई बार कहता है, बच्चे आप सभी मेरे नैनों के नूर हो, हैं? हाँ, बाबा के नैनों के नूर हैं, हाँ? नूर माना ज्योति, आंखों के नूर। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, हार्ट टचिंग जब अव्यक्त बाप दादा ने ये मुरली सुनाई थी और उसमें कहा था कि बच्चे आप सदा मेरे नैनों में समाये हुए नूर हो, आप बच्चे ही मेरी आंखों में रहते हो, आप ही मेरे नूर प्रकाश ज्योति हो। तो बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में उसे स्पष्ट किया था कि देखो बच्चे, अगर कभी माया आएगी, अगर माया आपके ऊपर अटैक करने के लिए आएगी, वार करने के लिए आएगी, तो आप बच्चे तो मेरे नैनों के नूर हो ना। तो जब माया आपके ऊपर अटैक करेगी, मैं अपनी पलकों को बंद कर लूंगा, तो आप बच्चे माया से सेफ हो जाएंगे, बच जाएंगे। माना उस समय जब बाबा के ये महावाक्य सुन रही थी, माना मुझे इतना दिल को लगा कि बाबा हम सभी बच्चों को कितना प्यार की दृष्टि से देखता है, कितना प्यार करता है, कितना दुलार करता है। कोई बच्चा खेलता हुआ किसी से लड़ झगड़ करके भी आ जाता है माँ के या पिताजी के गोद में चिपक करके बैठ जाता है, तो फिर वो क्या समझता है? हाँ, वो बच्चे भी दौड़ दौड़ के आएंगे तो फिर भी वो खिलखिलाता हुआ हंसता रहता है, ये सोच करके कि अब मैं सेफ हूँ, मेरी संभाल करने वाले ये माता पिता हैं जिन्होंने हमें पकड़ा हुआ है, गोद में बिठाया हुआ है। तो ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों को अपनी पलकों के अंदर समा लेता है और माया से सदा सेफ रखता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे बन गए, माना माया से तुम बच गए। बच्चे बने ना, तो माया से बच गए। अगर हमेशा अपने आप को हम अपने बाबा की गोद में पाते हैं, मैं बाबा की गोद में समाई हुई हूँ, बाबा की गोद में बैठा हुआ हूँ, तो मेरी सेफ्टी का आधार सिर्फ बाबा ही है। और हम अपने आप को बड़े ही मस्त अवस्था में अनुभव करेंगे, तो कितनी मन के अंदर खुशी होगी, कितना अपने अंदर साहस आएगा, कितनी निर्भयता हमारे अंदर आएगी कि मेरा बाबा बैठा है, मैं बाबा के एकदम नजदीक हूँ। अभी बाबा के जो फोटो निकलते हैं, तस्वीर, हाँ, उसमें नीचे लिखा होता है ना, तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। अब इतनी जिम्मेवारी अगर कोई ले और उसका हम अच्छी तरह से अनुभव न करें, ये हो सकता है? तुम चिंता नहीं करो, मैं बैठा हूँ, तो हमको तो बाबा चिंता से भी मुक्त करा दिया ना। चिंतामणि ने हमारी सारी चिंताओं को हर लिया, ले लिया। अब हमें क्या चिंता करना है? बस निश्चिंत हो करके अपना पुरुषार्थ करना है, बस, और कुछ नहीं। तो बहुत सहज रीति से बाबा हमें ऐसे ऐसे दैवी गुणों को भर करके, जितने भी सारे गुण है, अंतर्मुखता, गंभीरता, हर्षित मुखता, मधुरता, सत्यता, जो भी है, हर गुणों का एक गुलदस्ता हमारे पास जब तैयार होता है, और हम जब बाबा के सामने जाते हैं तो वही बाबा का सत्कार, और बाबा भी हम बच्चों को देख करके खुश होता है कि मेरे ऐसे गुणी ज्ञानी बच्चे हैं। इसलिए बाबा ने कहा है, बच्चे आप अपने पास इतना स्टॉक रखो इन सभी गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का, योग का, सुख का, शांति का, इतना स्टॉक रखो जो आपके पास आने वाले जो भी व्यक्ति आत्माएं होंगी वो आपसे ले सकेंगी, आपसे प्राप्त कर सकेंगी। वर्तमान की स्थिति जो संसार में अभी अपने देश के अंदर जो स्थिति है, क्या है? सभी गरीब हो जाएंगे। कौन से गरीब? सुख शांति के गरीब हो जाएंगे, साधन पैसे ये सब होने से नहीं। लेकिन जब जीवन में सुख शांति गुण शक्ति ही नहीं होगी तो उनका जीवन क्या है? गरीब ही हो गया ना। और ऐसे गरीब आत्माओं की लाइन आपके सामने लगेगी तो आप क्या करेंगे? उन्हें तो देना है ना। और अगर हमारे पास स्टॉक नहीं होगा तो हम फिर कैसे देंगे? तो इसलिए बाबा ने कहा है, बस देते जाने का ही संकल्प करना है, देना है, देना है, देना है। हम इतना आहरण करें जो हम भी यूज करें, दूसरों के लिए भी यूज करें, और कुछ जमा हो जो समय अनुसार औरों के लिए भी यूज हो, तो स्वतः ही हमारा पुण्य का जो खाता है, सेवा का जो श्रेष्ठ खाता है, वो हमारा भरता जाएगा। हमारे श्रेष्ठ कर्म ही हमारे पुण्य के खाते को बढ़ाते जाएंगे। तो स्टॉक जमा करते रहो, स्टॉक जमा रहे और सदा खुश रहो, खुश रहो और खुशी बांटते रहो। कोई भी दुखी आत्मा, कोई भी निर्बल आत्मा, कोई भी ऐसी संस्कार वाली आत्मा आपके सामने आए, उसको शक्ति का दान दो, उसे सुख का दान दो, शांति का दान दो, उसको जो जिन चीजों की आवश्यकता है उसको दो, तो वो आत्मा संतुष्ट होगी। और जो आत्मा संतुष्ट होगी तो वो तो फिर दुआ भी देगी ना, आशीर्वाद भी देगी ना, कि मुझे जो प्राप्त करना था वो मुझे मिला। तो अपने आप को इतना हमें भरपूर करना है, जो बाबा कहते हैं, बच्चे संपन्न बनो और संपूर्ण बनो। जितना संपन्न बनेंगे, हर बातों में संपन्न होते जाएंगे, तो संपूर्णता की अवस्था ऑटोमेटिक आती जाएगी। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और भरते भरते जब भर जाता है तो क्या कहते हैं? पूर्ण कुंभ कहते हैं, पूर्ण कलश कहते हैं, पहले भरता है। हम भी एक एक से गुण उठाएं, गुणों को जीवन में धारण करें, एक एक की विशेषताओं को लें, उन विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करें, हर एक से एक एक चीज को प्राप्त कर करके अपने अंदर डालते जाएं। बाबा जो सिखला रहा है उसको हम भरते जाएं, दीदी दादियों से जो हमें प्राप्त हो रहा है उसे हम भरते जाएं, तो क्या होगा? एक दिन हम अवश्य संपूर्ण हो ही जाएंगे। तो बाबा का ये जो संकल्प हम सभी बच्चों के लिए है। और बाबा हमें जिन जिगर से जो देखता है, जिस दृष्टि से हमें देखता है, तो उस संकल्प को पूर्ण करना तो हमारा ही कर्तव्य है ना। हम सभी बाबा के इस घर के श्रृंगार हैं। हाँ, बाबा कई बार कहता है था कि मेरे घर के श्रृंगार बच्चे सब आए हैं। और जब बच्चे जाते थे तो एक गीत बजता था, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। और उस समय कोई भी ऐसा बच्चा या बच्ची नहीं होता था जो किसी के आंख न झलकते, आंखों से धार धार अश्रु धारा बहती थी बाबा के प्रेम में। बच्चे सभी खड़े होते थे, बाबा उनको छुट्टी देता था और अपने ही रुमाल से सबकी आंखों को पोंछता था। इतना प्यार कौन करेगा। माता पिता के भी ज्यादा बच्चे होते हैं तो उनको भी किसी को प्यार करते हैं, किसी को थपथपा देते हैं, किसी को कह देते हैं तुम सो जाओ या पढ़ो या कुछ भी। तो हम सभी बाबा के जो श्रृंगार बच्चे हैं, बाबा ने जो हमें विश्व के शोकेश में रखा है, सैंपल के रूप से हम सभी हैं। तो सैंपल तो क्वालिटी वाला होता है ना। तो हम अपने अंदर जितनी श्रेष्ठ क्वालिटीज को धारण करते जाएंगे तो हम क्वालिटी वाले सैंपल हो जाएंगे, क्वालिटी वाले हम श्रृंगार हो जाएंगे। तो बाबा का घर सजाया माना हमें तो पूरे संसार को सजाना है, पूरे संसार को स्वर्ग बनाना है। और पूरे संसार को स्वर्ग बनाना माना उसमें रहने वाली जो भी आत्माएं हैं सभी को वैसे ही श्रृंगारित अवस्था में तैयार करना है। तो उसी में हमारी बहुत बड़ाई है, बहुत विशेषता है। और बाबा का ऐसा बच्चा बन करके अपने आप को दिखाना, तैयार करना, तो बाबा क्या कहेगा, ये सब मेरे 100 पीस बच्चे हैं। भगवान की प्रत्यक्षता बच्चों के द्वारा होगी ना। बाबा ने बच्चों को प्रत्यक्ष किया है और बच्चे ही फिर भगवान को प्रत्यक्ष करेंगे। अभी अभी मुरली में बाबा ने कहा था, संसार में चारों तरफ सफेद वस्त्रधारी, श्वेत वस्त्रधारी इस तरह फैल जाए जो सभी को ये नजर आए कि फरिश्ते घूम रहे हैं। पूरा संसार ही फरिश्तों का संसार है और आज वो हम सभी देख रहे हैं। विश्व के कोने कोने में सेवा हो रही है, जहां जाओ वहां श्वेत वस्त्रधारी मिलते हैं। और फिर एक समय ऐसा आएगा जो ऐसे रत्न जड़ित ताज सजे सजाए स्वरूप वाले देवी देवताओं का साम्राज्य होगा। तो उसमें तो हम लोगों का ही पार्ट है और हम जिनको तैयार करेंगे उन सभी का पार्ट है। तो इसलिए बाबा की जो भी महावाक्य, जो भी ज्ञान रत्न हम सभी को प्राप्त होते हैं तो उसको जितना जितना हम अपने जीवन में धारण करते जाएंगे तो अवश्य ही हम अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर सकेंगे। बहन जी ने मेरे नाम से परिचय आप सभी को कराया तो बाबा ने मुझे परी का नाम क्यों दिया, ये भी एक मतलब मुझे आज भी जब कभी विचार आता है, संकल्प आता है तो मैं ये सोचती हूँ कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। जब हम सभी बचपन में उस समय 6th क्लास या ऐसे पढ़ते थे तो जब मधुबन में आते थे तो बाबा हम सभी को एक वीआईपी परिवार के रूप से देखता था, और बाबा के साथ जो सामने में ऑफिस है यीशु दादी का, वहाँ बाबा बैठते थे, यीशु दादी पत्र वगैरह सुनाती थी। और एक समय था कि बाबा ने वहाँ उस ऑफिस में बुलाया हमारे लौकिक माताजी, पिताजी और जो भी भाई बहन थे। मुझे बाबा ने अपने खटिए पर बिठाया, बाबा वहाँ एक खट क्या चौकी पड़ा हुआ था, तो बाबा भी बैठे थे और बाबा ने कहा बच्ची यहाँ बैठो, और फिर और सब भी आसपास बैठ गए। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? मैं एकदम चुप रही, इतना बड़ा बाबा उनके सामने मुख खोलने का साहस। फिर हमारी लौकिक माँ ने कहा इसका नाम नीलम है। तो जैसे ही बाबा ने सुना कि ये नीलम है, तो बाबा ने कहा अरे ये तो मेरी नीलम परी बच्ची है, ये उड़ उड़ करके सेवा करेगी। तो तब से ही बाबा ने, जब भी बाबा का कोई पत्र वगैरह आता तो नीलम परी बेटी को याद देना। हम लोग भी बाबा को पत्र लिखते थे, बाबा हमने इतनी पार्टी समझाई, इतने लोगों को समझाया, तो बाबा ने कहा उन सभी फूलों को एक टोकरी में भर करके तुम बाबा के पास लाना। है ना, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर पत्र बाबा के हम सभी के पास पहुंचते थे। तो तब से ही बड़ी दीदी जी, प्रकाशमणि दीदी जी, दादी जी, निर्मल शांता दीदी, सभी मुझे वो नीलम परी के ही नाम से पुकारते रहे। और इस तरह से परी तो क्या, लेकिन अभी जिस स्थान पर सेवा में रत हैं, तो वो भी एक पहाड़ी अंचल है, नवरंगपुर का एरिया, उड़ीसा का एक लास्ट कोना ही कहेंगे। और आप सभी मालकानगिरी, बाली मेला, काली मेला, जो नक्सल लोगों का गढ़ है, ऐसे लोगों के बीच में रह करके वहाँ सेवा का कार्य चलता है, तो ये भी बाबा की ही करामात है जो ऐसे स्थान में, पहाड़ी अंचल, दूर दूर अंचल, बहुत बहुत रास्ते जंगलों में बीतते हैं, तब जाकर के एक एक शहर टाउन आता है। तो ये बाबा की ही कमाल है। और जहाँ मतलब उन लोगों की भी सेवा होती है इनडायरेक्ट, वो लोग सिविल ड्रेस में आते हैं, मैगजीन ये वो सब लेकर के जाते हैं, लिटरेचर लेके जाते हैं, और उनका जो गढ़ होता है जहाँ सब इकट्ठे रहते हैं, वहाँ वो लोग आपस में पढ़ते करते हैं, ऐसा मतलब उनसे जानकारी दूसरों से मिलती है। तो ऐसा स्थान है और वहाँ के 6 डिस्ट्रिक्ट में सेवा चल रही है। तो इसलिए मुझे अभी जब मैं 6 क्लास में पढ़ने टाइम में परी होंगी कि क्या होंगी वो तो पता नहीं था, लेकिन अभी जब सोचती हूँ तो यही लगता है कि बाबा को भविष्य मेरा पता था कि इसको उड़ उड़ करके सेवा करनी है। तो इसलिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, तीसरे पहाड़ पर दौड़ दौड़ करके, उड़ उड़ करके जाती हूँ, और जो बाबा की सेवा, बाबा जो भी कराता है वही सेवा करती हूँ। अच्छा, ओम शांति।